आए परदेश, तो आए ओ घनसुस चलिया उतारा वीरान आए बारा चला बेरी पूरे चला बेरी पूरे वतन माएगा पूरे वतन माएगा पूरे वतन माएगा दूरे जाना पहले पूरे गल सुन चलिया वो छोरा
listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
647-872-4900
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ईद मेला 27 अप्रैल चंकुसी पार्क ब्रैम्पटन में ढेरों फ्री फन एक्टिविटीज आपकी मुंतजर हैं। हलाल फूड ट्रक्स, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, गिव अवेज और बहुत कुछ। मकामी तंजीमों की मदद के लिए अपने साथ कोई भी खिलौना या खराब न होने वाला फूड आइटम लाइए और कम्युनिटी को वापस देने के जज्बे को तस्कीन दीजिए। मजीद मालूम के लिए brampton.ca/ईद।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे सेल तो सिर्फ अप्रैल 20th से मई 12th तक ही है, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे। विजिट leezascosmetics.com।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने दी निम्रता सहित बेनती कीती जांदी है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
मामा, लंच रेडी है? बहुत भूख लगी है।
या मॉम, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया।
बाय द वे, क्या बनाया है?
जो टीवी देखते हुए खाएगा उसके लिए करेले, और जो मोबाइल हाथ में लेकर खाएगा उसके लिए टिंडे, और जो तमीज से सबके साथ मिलकर खाएगा उसके लिए बिरयानी।
यही है मीनार बासमती राइस का मजा, लंबा खिलता खुशबूदार दाना, पर जब भी खाना मिलकर खाना। मीनार, हर दाने में प्यार।
जी साहब, नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड सब एक खूबसूरत गीत की तरफ फिर चलूंगा आपको। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये है। एंड इस गीत के फौरी बाद फिर हम आपको ले चलेंगे, पूरी दुनिया की सैर कराएंगे। मेरा मतलब है कि आपको पूरी दुनिया की न्यूज सुनाएंगे, तो न्यूज सुनने के लिए आप तैयारी पकड़े। इन द मीन टाइम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में अखियां उड़ीक दिया सबा फरमाइए। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
दुहाई समय की क्रियादारी आ टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
भाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला.
ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी फ्रूट्स दाला सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा.
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट दाला सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप. नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे प्लेटां बाटियां सब कुछ मिलदा. साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है. एशियन फूड सेंटर दी Ontario which in 9 locations which on jithe marzi aa jao.
Shoppers ho jaiye taiyar, Lisa Cosmetics phir se leke aa rahe hain bade brands ki badi savings aur big sale khaas aapke liye.
Ji haan, world famous brand ke perfumes, cosmetics and skin care, health and beauty products, fashion, purses, luggage, designer sunglasses, hair care, nail color, chocolates aur bahut kuch.
80% तक की savings on your favorite brands.
बस आपको आना है 135 Commerce Valley Drive, East Markham.
ध्यान रहे, sale तो सिर्फ April 20th से May 12th तक ही है, Friday, Saturday, Sunday और Monday. Liza's Warehouse Sale, यानी ज्यादा swag for less money. Visit Liza'sCosmetics.com.
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है.
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो दूसरे एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है.
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर. गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे.
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं. बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी. 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800.
खाना हो तो आ जाओ शाहीन, शाहीन टिक्का और कबाब.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब, बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, मल्ट वॉटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम.
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल.
समय नाजरी, वेलकम बैक अगेन. एंड 5:15 और 20 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं. 20 सेकंड ऊपर चलेगा इतना जायज है. और अब चलेंगे हम आपको न्यूज की तरफ लेके, और इस न्यूज सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन दिया है ओपन माइक कैफे ने. ओपन माइक कैफे आपको मिलेगा 1310 डंडास एंड डिक्सी का मेजर इंटरसेक्शन बनता है ये. और सब अगर पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हों, क्योंकि शेफ्स वगैरह सारे पाकिस्तान से आए यहां पर, ओपन माइक कैफे में तशरीफ लाइए. और अगर आपने कोई पार्टी वाली करनी है और उसके लिए भी आप यहां पर पहले से बुकिंग करवा सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपने घर पे दावत देनी है तो इनसे टेक आउट कर लें. ओपन माइक कैफे 416-526-6800 इनका फोन नंबर है. और इसके साथ साथ डेंटिस्ट्री और मिसिसागा की बात कर चलूं, यहां पर डॉक्टर नाजिया रहमान होती हैं डेंटिस्ट्री और मिसिसागा। इनका कहना है फैमिली ब्रेसेस कॉस्मेटिक्स इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम, दो लोकेशन सर्व करते हैं, दोनों लोकेशन इन ब्रैम्पटन। न्यू एंड इमरजेंसी पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं आपको, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन। डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100 इनका फोन नंबर है। ग्रोसरी किसने नहीं करनी हो, अभी देसी ग्रोसरी भाई, हलाल गोश्त हलाल चिकन पाकिस्तान हिंदुस्तान की ग्रोसरी करनी हो आपने, तो आप पहुंच जाइए कहां पर, बटाला सुपरमार्केट पर, बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड, मार्कम एंड एग्लिंडन का मेजर इंटरसेक्शन बनता है। 4162643111 इनका फोन नंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हेयर मैक्स के जनाब शिराज रहीम कहते हैं कि अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो या हो रही हो तो साफ परवाह की जरूरत नहीं है आपको, आप पहुंच जाइए हेयर मैक्स के शिराज के पास, दो लोकेशन से सर्व करते हैं आपको, एक टोरंटो में और एक मिसिसागा में। हेयर मैक्स के शिराज कहते हैं कि अगर आपने साजो आवाज का हवाला दिया तो आपका हियरिंग टेस्ट जो है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। ये लीजिए साहब, हेयर मैक्स के शिराज का फोन नंबर है 4167928792। चलिए साहब अब लिए चलता हूं मैं आपको कहां पर, खबरों की जाने, म्यूजिक तो बजा दिया ना हमने, म्यूजिक भी बजाया हाल है, ले मैं अभी बातें कर रहा हूं, म्यूजिक भी बजाया, वो बंदा आता ही नहीं है यहां पर, लो पहले म्यूजिक सुन लो उसके बाद वापस आते। इसलिए कहते हैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे भी ट्रस्ट ना करो साहब, जिनके साथ आप पूरा दिन गुजारते हो उन पे भी ट्रस्ट ना करो आप, वो भी आपको गलत रहे। जैसे मैंने म्यूजिक बजाया तो हंसी की आवाज आ रही थी मुझे, बेहतर हंसी की आवाज आ रही थी, मैंने कहा यार कि क्या हो गया, तो कहती है आपने बजा दिया था म्यूजिक, मैं तो आपको देख रही थी कितने गैर हाजिर हैं आप, मैंने कहा ले ट्रस्ट भी कोई चीज होती है, फिर सोचा यार ट्रस्ट व्रस्ट कहाँ है यार आजकल, सिर्फ कहना ट्रस्ट ही रह गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप?
अस्सलाम मजीद भाई, ये सारी बात करेक्टर की है, करेक्टर होना चाहिए। देखें एक वो गाय वाला था ना, गाय बेच रहा था, हैं? तो वो जो लोग उसको पास लेने आ रहे थे उसको, तो वो उनको कह रहा था जी ये जो गाय है ये देती है 50 किलो गोश वो दूध है जी, और दिन का, और मैं जो है इसको मैं 5 लाख, मैं इसको 2 लाख का बेच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी महंगी है, उन्होंने कहा अच्छा चलो आगे आ जाओ थोड़ा, तो आगे आए और कहते हैं जी ये जो है ये 30 किलो दूध, 30 लीटर दूध दे देती है, लेकिन ये जो है चलो मैं आपको कोई नहीं 1 लाख में मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा और आगे दिखाओ, आगे दिखाया, कहते हैं जी ये जो है ना सिर्फ ये 10 लीटर दूध ही देती है, लेकिन ये 5 लाख की मैं बेचूंगा आपको। उससे कहा जो 10 लीटर टोटल दे रही है उसको 5 लाख की क्यों बेच रहे हो? कहने पैन कैरेक्टर भी कुछ नहीं। तो पैन ये सारी पैन ये सारी बात कैरेक्टर की है,
कैरेक्टर की है जी,
कैरेक्टर की है,
कैरेक्टर भी है,
है जी,
कोई
कैरेक्टर भी कोई चीज है, हाँ हाँ। और मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि कैरेक्टर बिल्डिंग तो पढ़ा ही नहीं रहे आजकल,
हाँ।
और जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो मसला फीसा गोरस टाइप चीजें, मुझे बताएं वो कोई जिंदगी में कोई अप्लाई होती है कहीं पे, वो अप्लाई होती है,
उसका कैरेक्टर ही नहीं है,
उसका कैरेक्टर प्लासी की जंग पढ़ाई जी, वो प्लासी की जंग का भाई प्रैक्टिकल लाइफ में किधर यूज है बताओ? अच्छा उस पे जो है टीचर्स डांटते भी हैं, तो कहते हैं तुमने डेटे भी गलत लिखी हैं, स्टोरी भी सारी गलत लिखी है, ऊपर लिखा है प्लासी की लड़ाई, नीचे रखा हुआ क्रिकेट का हार, तो मतलब उसमें मारे भी पड़ती हैं, डांटे भी टीचर्स की पड़ती हैं, भाई फेल भी कर देते हैं। वो हम पूछना चाहते हैं टीचर से कि भाई ये प्लासी की लड़ाई टाइप और ये मसला फीसे वोरस टाइप जो चीजें हैं इसका प्रैक्टिकलिटी किधर है हमारी लाइफ के? अंदर, बताओ जरा।
कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, आई एग्री विद यू
100%। कैरेक्टर डीलर ये कैसी चीजें पढ़ा रहे हैं?
उस्तादों का नहीं है,
हाँ
इसमें जो सिलेबस बनाते हैं ना,
हाँ
उनका है ये,
उनका कैरेक्टर डीलर।
अब ये वो पॉलिटिशियन है,
हाँ वो सारे पॉलिटिशियन है, हाँ बिल्कुल।
डू आई हैव टू से एनीथिंग मोर?
नहीं। तो ये है जी सारे चप्पूर असल में, ठीक है जी। तो ये सारा खेल करेक्टर का है, तो हमने आज कंफ्यूज किया है माजिद भाई को ये देखने के लिए कि माजिद भाई जो है जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। देखो जी जागते रहो,
नहीं नहीं जाग रहे,
जागना नहीं है तुझे?
नहीं, नहीं।
ओ, चलो ठीक है फिर रहने दो, चलो ठीक है, चलो जी कम कर लीजिए,
कम कर लो,
हाँ कम कर लेंगे। अच्छा जी, ये सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो है उसका मैसेज है, और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कहती है जी कि गेज पार्क को हम रेनोवेशन कर रहे हैं अप्रैल से नवम्बर तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो भी कोई सर्विसेज हैं जैसे कि स्प्लैश पैड्स हैं और प्ले ग्राउंड हैं या फिर रेस्ट रूम्स हैं वो बंद हो जाएंगे, वो बंद बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर आप गेज पार्क में अक्सर जाते हैं ब्रैम्पटन में, तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर लें www.brampton.ca/gage park। ठीक है जनाब। इसके अलावा जनाब जुनून का रैक कॉन्सर्ट मई 4th को जबरदस्त किस्म का, उसकी टिकटें जो है टिकट मास्टर से जाके आप ले लें और आपको चांस मिलेगा उनके साथ स्टेज पे जाके गाने का, मिल सकता है आपको ये। दिस इज अ बिग थिंग, बिग डील है ये, बिग डील है। अगर आप जो है उनकी आप जो है वो अच्छी वाली अगर टिकट लेंगे, जो अगर आपने $10 वाली ली फिर तो आप इतने पीछे होंगे आप स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते।
अकेले गाते रहना,
अकेले गाते रहना, उधर खड़े होकर नाचते रहना, जज्बा जनू तो हिम्मत ना आ रहे हैं।
हिम्मत ना आ
रहा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है आपने लीजर्स कॉस्मेटिक, बड़ी जबरदस्त ये सेल चलती है, जो सियाणे हैं, सियाणे हमारी तरह के सियाणे पूरे साल के लिए जो है चीजें खरीद के परफ्यूम ले रख लेते हैं वहां पे, है जी। और फिर जिस जिस की कोई बर्थडे शर्थडे आती रहती है उसको ये 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में जो है ये उस पर हम चीजें लेके रख लेते हैं वहां से। और सिर्फ परफ्यूम्स नहीं मिलते, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, हाउस और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, पर्स हैं, जूतियां हैं और कॉस्मेटिक्स की दूसरी चीजें हैं, आपको बेशुमार चीजें,
सारी ब्रांडेड,
सारी ब्रांडेड, सारी
ब्रांडेड, ब्रांडेड,
कोई वो हमारे जो हम साहब
मेड इन चाइना नहीं,
यानी मेड इन चाइना कुछ भी नहीं है उसमें, सारे ये फ्रेंच ब्रांड्स हैं जी, फ्रेंच और जर्मन, और जर्मन तो कम है, फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये सारे ब्रांड जो है वहां पे उनकी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, ठीक है जी। तो जरूर उधर चक्कर मारें। एंड जनाब इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, यहां पे बहुत सारे लोग, यानी कि 1400 लोग बुला सकते हैं, प्लस मैं और माजिद भाई, देखो ना 1400 लोगों में हम किधर नजर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिल बटा करो जरा, बुला लो सारू भी, हाँ सारू भी बुला लो, इसको पहले के ऐसी दरख्त बैठ के प्रोग्राम करिए, कुछ आके अच्छा खड़ा खा लिए कितने हैं जी, हाँ जी। तो ये 32 रूम लग्जरी होटल है और बड़ा ही जबरदस्त आइडली लोकेटेड है ये, 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में। आप इनको प्लीज कॉल कर सकते हैं 6479653823 पे, आप इनको कॉल कर लें, ठीक है जनाब, ऐसे है। अच्छा जनाब, अच्छा जी खबरें हम शुरू करते हैं अपनी। आज तो जो सुबह की सबसे हौलनाक और खतरनाक खबर थी, लंदन ओंटारियो के अंदर जो एक ट्रेन है उसको लग गई थी आग, ठीक है जी। और ये संडे नाइट था 11 PM जब 911 को कॉल आने शुरू हुए कि ये ईस्ट बाउंड एक जो ट्रेन है उसको आग लग गई है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और जो है उसके उसके ऊपर, और काफी ये लोग जो थे एरिया के काफी सहम गए थे क्योंकि आपको पता है ये ट्रेन चल रही है और उसमें आग लगी हुई है, तो बिल्कुल ही मूवी सीन आपको लगेगा। लंदन फायर जो है फिर उसको कॉल यहां पे किया था, वहां पे वो कहते हैं जी 5 रेलगाड़ियां जो है उनको जो वुडन रेलवे ट्रैक के ऊपर थी उनको आग लगी हुई थी, लेकिन जाहिर है इसके अंदर कोई भी ऐसा डेंजरस गुड्स नहीं थे कि जिसकी वजह से कोई खतरा इन्वॉल्व हो सकता था। यहां पे जो लोग थे उन्होंने भी मीडिया से फिर बाद में बात की जो कि थे रिचमंड स्ट्रीट एंड जो है ये पॉल मेल स्ट्रीट के ऊपर, और वहां पे उन्होंने जर्नलिस्टों को बताया कि भई ये यहां पे बहुत ज्यादा स्मोक भी आ रहा था और लेकिन फिर इसको क्लियर किया गया बाय 1 AM और जो ट्रेन यहां पे मूव कर रही थी उसके अंदर देखा जा रहा था कि डैमेज तो काफी आया है वैसे रेल कार्स के अंदर, और फिर बाद में जब सुबह आज एस्टीमेट लगाया तो तकरीबन $25,000 के करीब रेल कार्स को आया है, और जो रेलो होल्डिंग बिल्डिंग है उसके आस जो थी उसको $10,000 तक के नुकसान है। लेकिन ये तो इनिशियल जाहिर है कि वो इनकी प्रिडिक्शन है, जब एक्चुअल काम शुरू होएगा तो जाहिर हो सकती है कॉस्ट
ऊपर विलाट मोड में।
हाँ बिल्कुल ऐसे है। ऑन्टेरियो गवर्नमेंट जो है जी उसने अब अग्री किया है कि 320,000 लीगल फीस में देंगे, क्योंकि इनके ऊपर किया गया था एक क्लास एक्शन जिसके के अंदर इनसे 200 मिलियन के डैमेजेस मांगे गए थे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो फोर्ड गवर्नमेंट ने शुरू किया था बेसिक इनकम पायलट प्रोजेक्ट, उसको जल्दी जो कि डेट थी उससे अर्ली इसको टर्मिनेट कर दिया था। इसके अंदर 4,000 के करीब लोग इन्वॉल्व थे और इन्होंने ये कहा जी कि ये जो गवर्नमेंट रन बेसिक इनकम प्रोग्राम जो था जो इन्होंने अर्ली बंद कर दिया और कैंसिल कर दिया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। स्टीफन मोर्नियो जो है इसके कवालुजो LLP के पार्टनर हैं और हेड काउंसिल हैं इस क्लास एक्शन के, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ऑन्टेरियो ने एकदम से ये स्टॉप कर दी है स्पेंडिंग टैक्स पेयर्स मनी और इसलिए ये 320,000 जो है इन कॉस्ट आएगा लॉयर्स के लिए। ये अगेन ये जो है बिल्कुल अर्ली एस्टिमेशन है, इसके अलावा और कितने पैसे इसके अंदर आएंगे उसका अभी तक पता नहीं चला है। तो ऐसे है, ये गवर्नमेंट ने 3 साल पहले तकरीबन एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था एक बेसिक इनकम के ऊपर फॉर लो इनकम अर्नर्स इन हैमिल्टन, थंडर बे एंड लिंसी में, और इसको लॉन्च किया था 2017 में। इसका गोल ये था कि गवर्नमेंट डिटर्मिन कर सके कि क्या हम फिक्स्ड इनकम जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। 6,000 के करीब जो लोग थे उन्होंने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो इनको दी थी, हालांकि आपको पता ही है कि डिस्करेज करती है गवर्नमेंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था रिसर्चर्स को इन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी और लेकिन इसके अंदर फिर जाहिर है कि लोग चूंकि इस रिसर्च का में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो जॉब पे नहीं काम कर रहे थे, तो इनको दिया गया था जो सिंगल पार्टिसिपेंट था उसको $17,000 पर ईयर और जो कपल था उसको $24,000 पर ईयर दिया गया था। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको बंद कर रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर जो है ये क्लास एक्शन सूट आई थी तो उसको आज अब इन्होंने कहा जी हम इसको करेंगे सेटल करेंगे।
फेवर नहीं कर रहे वो, दे हैव टू डू इट,
दे हैव टू,
नो चॉइस
अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट।
हाँ
जी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक टेंटेटिव अग्रीमेंट जो है वो हो गया है जनाब TTC के बीच में और इलेक्ट्रिक और ट्रेडर्स जो ट्रेड वर्कर्स जो हैं उनके बीच में, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आज क्यूब लोकल 2 ने दी है। उन्होंने कहा थी कि इनकी जो डेडलाइन थी रात 12 बजे की थी और अगर ये हमारी डील ना होती तो फिर ये जो है हमारी स्ट्राइक जो है लोगों की शुरू हो जाती। सुमित गलेरिया जो हैं यूनियन के क्यूब लोकल 2 के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि ये जो लोग इसमें काम करते हैं TTC में उनकी वेलबींग के लिए हम काम करेंगे बल्कि टोरंटोरियंस की सेफ्टी के लिए भी काम किया जाएगा। ये बड़े अरसे से जो है निगोसिएशन स्टॉल की जा रही थी क्योंकि इसके अंदर जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो इन्फ्लेशन है उसके लिए रिलीफ नहीं इनको मिल रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे थे और बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनका तो कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किया गया था। TTC के जो चेयर हैं जमाल मायर्स, उन्होंने कहा जी कि हमारी एफर्ट्स जो हैं वो बड़ा अच्छा रंग लाई हैं और फेयर डील है ये दोनों साइड्स के लिए और हम चाहते हैं कि हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस जो है वो रखें, तो उसके लिए जाहिर है कि लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है और सबसे तो बड़ी बात यह है कि अगर ये इतने सारे लोग तकरीबन 661 के करीब ये लोग थे जो कि कम्युनिकेशंस और सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल उसके अंदर जो सेगमेंट्स थे उनके अंदर काम करते थे TTC के, तो उन्होंने कहा जी कि मायर साहब ने कि ये अच्छी बात है कि स्ट्राइक नहीं हुई और सिटी के अंदर ये जो है TTC
आज स्ट्राइक हो गई थी
1201
लास्ट नाइट।
जी जी
1201 लास्ट नाइट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका
खत्म हो गया
और आज स्ट्राइक हो जाती
तो वो कहते हैं जी कि थैंक गॉड कि हमारी हो गई है और ये सिटी जो है वी हैव हेल्प्ड इट मूव अहेड। ऐसे है ये जो उमर जमीर का मजदूरी केस अभी आप जो डिस्कस कर रहे थे ये 5 वीक से ये ट्रायल चल रहा था और कुछ तो डिटेल्स आपने दी ही हैं कि ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे अपनी फैमिली के साथ एक आउटिंग के लिए गया हुआ था और वहां पे अचानक से इसकी जो BMW गाड़ी थी उसके पास जी कुछ लोग भागते हुए आए, जो कि मतलब डिफेंस लॉयर ने वहां पे बताया, उसने कहा जी कुछ लोग भागते हुए आए, इसकी बीवी जो थी प्रेग्नेंट थी, इसका एक छोटा बच्चा था, तो ये पैनिक कर गया। इसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रॉबरी के लिए आ रहे हैं या हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, सबसे ज्यादा वो अपनी बीवी जो प्रेग्नेंट थी उसके लिए बड़ा परेशान हो गया था। तो उसने कहा जी कि इसने जो है वहां से भागने वाली फिर कोशिश की, उसके अंदर जो है ये जो था ये पुलिस कांस्टेबल जो था टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट का कांस्टेबल जेफरी नॉर्थम जो है वो इसकी गाड़ी के नीचे आया और वो मारा गया। पुलिस जो है और इनके जो साथी हैं लीजा फोर्ब्स वगैरह वो कहते हैं जी कि ये इतना टॉल आदमी था, ये तो कोई 6'3" इसकी हाइट थी, 300 जो है वो पाउंड इसका वेट था, तो ये कैसे हो सकता है कि इसको इन्होंने नहीं देखा। अच्छा, ये जो है उमर जमीर हर वक्त कहता रहा कि मैं नॉन गिल्टी प्लीट करूंगा, क्योंकि ये लोग प्लेन कपड़ों में आए थे, इन्होंने मुझे अपनी आईडी नहीं दिखाई थी, मुझे नहीं पता था ये लोग कौन थे, और जाहिर है कि इस तरह का अगर हैवी भारी भरकम आदमी आ रहा है तो उनको यही लगा कि हमें नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। पुलिस का ये कहना था कि नहीं, हमने इसको बताया था और हमने इसको अपने कार्ड दिखाए थे। इसने ये कह रहा था कि इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया था। बहरहाल जिस वक्त जज ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी शुरू फिर की, तो इनको पता चला कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी इनके बयानात के अंदर, ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे। तो एज अ रिजल्ट जो है 5 हफ्ते की ये मर्डर ट्रायल, जिसके लिए इसको फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया गया था, उसके लिए जस्टिस एन मॉले ने जो है वो आज इनको माफी मांगी, और उन्होंने कहा जी कि जो आपने बहुत दुख उठाया इस सारी चीज के बीच में, मुझे उसका बड़ा अफसोस है, हम सॉरी इसके लिए करते हैं, और जो है इनको कहा कि यू आर अ फ्री मैन।
अच्छा, अब बरी कर दिया गया।
हाँ, बाइज्जत इनको बरी कर दिया। अच्छा, अब ये, और इससे पहले इन्होंने जो जज थी उन्होंने ये जो 12-person पैनल बैठा हुआ था उसको भी उन्होंने एडवाइस किया था कि भाई आप ये जो पॉसिबल जो कोलूजन ये लोग कर रहे हैं आपस में उसके ऊपर आप जरूर देखें, क्योंकि जो फिजिकल एविडेंस है वो इनकी टेस्टिमनी जो ऑफिसर्स की उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी थी। बहरहाल जी इसको आज बरी किया गया, तो जमीर जो है वो उसी वक्त अदालत में जोर जोर से रोने लगा, इसकी बीवी जो है आयदा शेख वो भी रोने लगी, और कोर्ट रूम के बाहर जो है मीडिया जमा हुआ हुआ था उससे इसने जो है सॉरी किया, उसने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस है, उसकी फैमिली का भी एक बंदा जो है उसका लॉस है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पुलिस वाले हैं जो उस एरिया में उस वक्त आए हुए थे एक केस के सिलसिले में, और प्लेन क्लोज में थे वो उस वक्त। लेकिन जाहिर है कि जो नॉर्थम की फैमिली है और जो खुद टोरंटो पुलिस है वो बड़े जी डिसअपॉइंटेड है इस उससे, उनको लग रहा था कि हाँ बहुत डिसअपॉइंटेड है, उनको लग रहा था कि जमीर साहब जो है इनको जो है वो सजा मिलनी चाहिए थी इस।
और अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है शर्वे जी के चीफ मारन डेमक्यू जो है टोरंटो पुलिस के चीफ जो है उन्होंने कहा है कि इसकी फुल इंटरनल रिव्यू होगा, जस्ट नाउ ही ऑर्डर्ड कि उनका फुल इंटरनल रिव्यू होगा एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है। टीपीएस ने भी कहा है कि भाई इसका फुल रिव्यू होना चाहिए एंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल शुड बी आंसरेबल।
हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल ऐसे। और मेरे भाई दूसरी आप खबर दे रहे थे होंडा कैनेडा की कि ये ईवी जो है बैटरीज बनाएंगे और इसकी जो इन्होंने कॉस्ट निकाली है $7 billion का कैपिटल है जो कि ये यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रीमियर डकफोर्ड साहब जो हैं आज फर्स्ट नेशंस कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी, एंड एज अ रिजल्ट अब ऑन्टेरियो के अंदर ये तीसरा प्लांट आ रहा है। एक तो होंडा का ईवी मशीन्स का ईवी व्हीकल्स का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्लांट आएगा, और फिर एक वोक्सवैगन का था इससे पहले, और एक था स्टेलेंटिस जो एलजी प्लांट था वो भी था। इसका जिक्र जो है अलबत्ता कि जी हम कितनी सब्सिडीज देंगे और टैक्स क्रेडिट्स देंगे उसका जिक्र फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्रिस्टिया फ्रीलैंड उन्होंने अपने बजट में अभी रिसेंटली किया था, और उन्होंने कहा था कि 10% ईवी सप्लाई चेन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो है टैक्स में वो दिया जाएगा उन लोगों को जो कि ईवी प्रोडक्शन जो है शुरू करेंगे मुल्क के किसी भी हिस्से में, एंड दिस इज ऑन टॉप ऑफ 30% क्लीन टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। तो अ लॉट ऑफ इनको छूट मिल रही है टैक्स के अंदर।
तो अब $7 billion जो है ना वो तो वोक्सवैगन का वो था, अब जो इन्होंने किया है इसकी जो कॉस्ट आएगी इनको, क्योंकि फ्रंट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके बीच में आएगी,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आएगी,
तो ये सारी चीजों का, मगर बनेगा वो एलिस्टन ऑन्टेरियो में ही।
जी जी जी,
क्योंकि वहां ऑलरेडी इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
हाँ, और ये कह रहे हैं जी कि हम और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे दो पार्ट्स होंगे, दो की पार्ट्स होंगे, उनकी अभी तक इन्होंने डेट्स नहीं अनाउंस की कि वो कब से काम शुरू करेंगे, लेकिन वो कहते हैं जी एक जो है बैटरीज के ऊपर काम करेंगे, जो बैटरीज हैं सप्लाई करने का एक तो वो हमारा होएगा, इसके अलावा दो और होंगे जिसमें कि कैथोड्स बनाए जाएंगे और एक के अंदर है सेपरेटर्स भी बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये काफी ह्यूज किस्म की जो है इन्वेस्टमेंट आई है जिसकी कि आज बड़ी खुशी का इजहार किया।
हम बड़े खुश हो रहे थे कि वोक्सवैगन जो है उसका बहुत बड़ा प्लांट जो है वो लग रहा है यहां पर $7 billion कॉस्ट से
जी,
मगर फोर्स आपने आज हिंट दिया है
हाँ.
कि दिस इज गोइंग टू बी मच बिगर देन वोक्सवैगन प्लांट.
हाँ, स्टेलेंटस एलजी का भी, स्टेलेंटस एलजी का भी जो प्लांट है विंडसर में, तो ये जो
सबसे
है,
बड़ा होगा
ये. हाँ, ये सबसे बड़ा
होंडा का
बिल्कुल. हाँ जी, तो गार्डियन की आज रिपोर्ट आई है जी, और ये इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट आई है, और इसीलिए जनाब वॉर को बढ़ावा 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 दिया जा रहा है. जो ये रिपोर्ट आज गार्डियन की आई है, ये शो करती है कि दुनिया के अंदर जो स्पेंडिंग है मिलिट्री के ऊपर वो बेतहाशा बढ़ गई है. ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इट हैज सीन 7% हाइक, और अब ये टच कर रही है 2.43 trillion US dollars को 2023 में. और रिपोर्ट जो है जाहिर है कि अभी इस साल आई है 2023 की, ये स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जिसको कहते हैं, सिप्री की ये रिपोर्ट आई है, और इसमें वो कह रहे हैं जी कि सबसे ज्यादा इसके अंदर यूएस जो है वो स्पेंड कर रहा है, फॉलोड बाय चाइना, उसके बाद रशिया, फिर जो है वो इंडिया, एंड देन सऊदी अरेबिया. तो ये आज इन्होंने जी एक्सपेंडिचर्स दिए, उन्होंने कहा जी रशिया जो है उसने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 24%, और अब ये रफली इसने जो स्पेंड किया है 2023 के अंदर 109 billion US dollars आर्म्स और एमिनेशन के अंदर. यूक्रेन जो है वो कहते हैं जी उसने भी 51% अपना बढ़ाया था, क्योंकि जाहिर है उसकी वॉर चल रही है रशिया के साथ, 265 billion US dollars, लेकिन इसके अलावा 35 billion जो है इसको एड में भी मिल रहा है वेरियस कंट्रीज से. वो कहते हैं जी नेटो जो है, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो जो है रिस्पॉन्सिबल है 55% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग, और इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि नेटो ने ये कहा हुआ अपने सारे जो मेंबर्स हैं उनको कि 2% ऑफ जीडीपी जो है वो अलायंस की डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर इंक्रीज करना है. अलबत्ता यूएसए ने 2023 में 9% हाइक जो थी वो शो की थी, और 2/3 ऑफ नेटो की जो टोटल एक्सपेंडिचर है मिलिट्री पे वो यूएसए की है. तो इसलिए इस वक्त जो यूएसए स्पेंड कर रहा है आर्म्स और एम्यूनिशन और ये सारा जो है मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इसकी, इट इज टचिंग 916 billion US dollars, विच इज 37% ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री, फॉलोड बाय चाइना. चाइना इज स्पेंडिंग 296 billion US dollars एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंडर, और उसके बाद जो है आते हैं जी रशिया. रशिया जो है वो मैंने अभी आपको बताया ये कि 109 billion US dollars वो कर रहा है, और जो फोर्थ नंबर पे है वो है इंडिया. इंडिया स्पेंट 83.6 billion US dollars ऑन मिलिट्री स्पेंडिंग. सऊदी अरेबिया स्पेंट 75.8 billion US dollars, विच इज 7.1% ऑफ इट्स जीडीपी. तो ये हैं जनाब पांच बड़े कंट्रीज जो कि बेतहाशा यूज कर रहे हैं, और इसीलिए जो है अमेरिकन गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि बिल्कुल वॉर्स जो है उनको और बढ़ावा दिया जाए, रोका ना जाए. जाहिर है इतना ज्यादा जो है वो उनके जो आर्म्स डील्स के अंदर है कंपनीज वो बेतहाशा जो है वो कमा रही हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की आज ये स्टोरी आई है जी, और इसके मुताबिक कुछ प्रो इजरायली ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कहा है कि यूएसए के अंदर जो अब कैंपेन्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स चलेंगी उसको ये फंड करेंगे, एंड दिस होल थिंग इज लेड बाय यूएस इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जिसको के एपैक भी कहते हैं, और ये बड़ी ही पावरफुल किस्म की जो है ये फोर्सेस हैं यूएस पॉलिटिक्स के अंदर. 2024 के इलेक्शन से पहले ही एपैक ने कहा है कि वो 100 million US dollars जो है स्पेंड करेगा ऑन इंडिविजुअल कांग्रेशनल कैंडिडेट्स, और मेनली डेमोक्रेट्स के ऊपर करेगा, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो स्पेंडिंग वो सपोर्ट नहीं करते हैं इसराइल को. तो वो कहते हैं जी एपेक का काम ही है कि ये एज अ लॉबी ग्रुप काम करता है, रिक्रूट और सपोर्ट करता है, और उन तमाम लॉ मेकर्स को चैलेंज भी करता है जो इसराइल के अगेंस्ट काम करते हैं. एपेक जो है वो कहते हैं जी इसके रूट्स हैं यूएस जायनिस्ट कमेटी फॉर पब्लिक अफेयर्स में, और इसको फाइंड किए इसको इट वॉज फाउंडेड बाय इसराइल गवर्नमेंट लॉबीज इन पोस्ट 1953 इसराइली मिलिट्री मैसेकर ऑफ डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जिसके के अंदर बच्चे और औरतें भी शामिल थे इन द वेस्ट बैंक विलेज ऑफ किबिया. उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसराइल के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर आ गया था कि तुमने क्यों लोगों को इतना ज्यादा मारा है, उस सारी चीज को अवॉइड करने के लिए किया था, और फिर 1959 में इसका नाम एपेक रख दिया गया था. इसमें इन्होंने इसके अलावा फिर 1960 1973 की जो योम किपर जो वॉर हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने बेतहाशा पावरफुल लॉबिंग की थी वाशिंगटन के अंदर और दुनिया सारी के अंदर जो है अपना इसराइल का नाम क्लियर करने की कोशिश की थी और इसके अंदर इन्होंने इन्वॉल्व किया था और अभी भी ये करते हैं बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स ताकि इनको सपोर्ट किया जाए। इनके बहुत सारे जो यार दोस्त हैं वो यूएस सेनेट के अंदर भी हैं और इसीलिए गाजा के अंदर जो वॉर चल रही है उसमें यूएस में जो पॉलिटिशियंस हैं और उसमें जो बड़े बड़े यूएस के जो पावर इन्फ्लुएंस जो सर्कल्स आप कह सकते हैं वो गाजा के ऊपर ज्यादा बात नहीं बल्कि इसराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो जाहिर है कि इलेक्शंस जो है नवंबर में आने वाले हैं और उसके लिए पॉलिटिशियंस को पैसे चाहिए और ये बेताशा पैसा खर्च कर रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है जी उन्होंने फाइनली अप्रूव कर दिया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का न्यू यूएस मिलिट्री एड फॉर यूक्रेन और इसके अंदर काफी जो है वो शोर हंगामा कांग्रेस के अंदर मचता रहा लेकिन फिर भी ये जो बायपार्टिजन डील थी वर्थ 61 बिलियन यूएस डॉलर पैकेज जो था इसको अप्रूव किया गया था और रिपब्लिकन्स ने कहा जी कि ये जो है ये डेडिकेट किया जाएगा आर्म्स और एम्यूनिशन लेने के लिए यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है उन्होंने यूएस की बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी अब हेल्प है इसमें हमें हेल्प मिलेगी रशिया को फाइट करने के लिए। अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं अंडर दिस यूएस विल प्रोवाइड देम एयर डिफेंस सिस्टम्स मिड एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर्टिलरी शेल्स और अभी तक क्लियर नहीं है कि ये यूक्रेन में ये सब चीजें कब पहुंचेंगी लेकिन जल्दी पहुंचेंगी क्योंकि अभी इसको सेनेट में पास होना है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और अगर सेनेट ने भी इसको पास किया तो फिर ये लॉ बनने के लिए जाएगा बाइडेन साहब के पास जो उसको साइन करेंगे। यूक्रेन जो है उसने कहा जी कि हम जो है यूक्रेन ने अर्लियर इनको कहा था कि हमको हेल्प चाहिए और अभी तक इसको जो है $9 बिलियन इकोनॉमिक हेल्प में भी दिए जा सके हैं एंड दिस हैज बीन गिवन अंडर द फॉर्म ऑफ फॉरगिवेबल लोन्स वो होते हैं जो उन्होंने वापस नहीं करने होते तो यानी कि $9 बिलियन यूक्रेन ने वापस नहीं करना है। वीकेंड के ऊपर आपने सुना ही होगा कि बहुत ह्यूज ब्लास्ट हुए थे इराक के अंदर जो ईरान की मिलिट्री बेस है उसके ऊपर और इसके अंदर जो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे बंदे जो थे वो मारे गए थे। इससे पहले आपको पता ही है कि इस्फहान के अंदर भी जो है ये एक अटैक इन्होंने किया था जिसकी के वजह से जो है वो ईरान ऑलरेडी जो है बहुत नाराज है। अच्छा इसके अंदर अब जो फोर्स कमांडर्स हैं उनका और बयान है मिलिट्री का और बयान है। मिलिट्री कहती है कि हमने कोई भी वॉर प्लेन आते हुए नहीं देखे थे। फोर्स कमांडर्स कहते हैं कि नहीं इन्होंने जो अटैक किया है वो तो उसमें जो है वो प्रॉपर अटैक है तो डेफिनेटली वॉर प्लेन्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहती हैं जी कि ये जो ब्लास्ट हुआ था ये इराक के पॉपुलर मोबिलिजैन फोर्सेस के ऊपर हुआ था और अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अटैक कैल्सो मिलिट्री बेस पे हुआ है विच इज 50 किलोमीटर साउथ ऑफ बगदाद इन बाबिल प्रोविंस उसकी जो है डिटेल्स क्या है। चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल अजीज अल मोहम्मद दिवाई उन्होंने ये सारी लोकेशन का किया था दौरा किया था। इराकी मिलिट्री जो है वो कह रही थी कि जी हम जो हमारी टेक्निकल टीम है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन एंड फायर एट द बेस। अलबत्त यूएस मिलिट्री ने फौरन इसके ऊपर जो है बयान देते हुए कहा है इनकी जो सेंटकॉम है सेंट्रल कमांड जिसको बोलते हैं उसने एक्स के ऊपर लिखा है कि यूएस का इस स्ट्राइक के साथ जो कि इराक में हुई है ईरान के बेस के ऊपर उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मतलब है कि ये फिर अगर उसने नहीं किया तो फिर जाहिर है कि इसराइल ने किया है तो ये जनाब ऐसे हैं। टर्किश प्रेसिडेंट जो है तैयब अर्दोगान साहब उनकी मीटिंग हुई है हमास के लीडर जो है हानिया के साथ इस्तंबुल के अंदर और आपको पता ही है कि तुर्की हैज बीन वेरी वेरी वोकल जो ये अक्टूबर 7 के बाद जो इन्होंने जुल्म शुरू किया और जीनोसाइड शुरू किया इसराइल का उसके बड़े खिलाफ ये बोलते रहे हैं। आज इन दोनों की मुलाकातें हैं जो है डोलमा बाचे जो पैलेस है उसके अंदर इनका हुआ था और सिंस 2011 टर्की के अंदर हमास का एक ऑफिस भी है क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो इजरायली सोल्जर गिलाद शालित जो था वो पकड़ा गया था और उसमें वो डील करवानी थी तो फिर टर्की ने जो था हमास के और इनके बीच में एक डील कराई थी। उसके बाद से जो हानिया साहब हैं वो कॉन्स्टेंटली इन टच हैं तुर्की की लीडरशिप के साथ और वहां पर अक्सर जो है विजिट भी करते हैं। इस मौके पर बात करते हुए तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी बात इस वॉर के अंदर जो गाजा में हो रही है वो ये है कि फलस्तीनी को यूनाइटेड खड़ा रहना पड़ेगा और इस जो है ये इसराइल का जो ऑफेंसिव है उसके खिलाफ यूनाइटेड रह के लड़ाई करनी पड़ेगी। मतलब और की बेचारे लड़ाई करनी है, 37,000 से ज्यादा बंदे मार दिए हैं वहां पे, तो 34,000 से ज्यादा बंदे मार दिए। अच्छा जनाब, मेजर जनरल आरोम हेलवन जो के हेड ऑफ इसराइल्स मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से फॉर फेलियर टू स्टॉप हमास सरप्राइज विजिट। उन्होंने सारे का सारा ब्लेम जो है अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है इसको मैं इस इंटेलिजेंस को पढ़ नहीं सका और मैं इस अटैक को रोक नहीं सका, जिसकी वजह से अब ये वॉर शुरू हुई हुई है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 34,000 से ऊपर पैलेस्टीनियंस को इजरायलीज ने मार दिया है, 77,000 से ऊपर लोग जो हैं वो वुंडेड हैं पैलेस्टीनियंस। ये जो हमास का अटैक हुआ था अक्टूबर 7 में, इसमें 1,139 जो है वो इजरायलीज की डेथ हुई थी, और उसके बाद इन्होंने दे एक्चुअली ओपनड हेल ऑन पैलेस्टीनियंस। इसराइल के जो मीनवाइल डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उन्होंने आज कहा है अपनी जो इजरायली मिलिट्री का नेटजे यहूदा बटालियन है जिसके के ऊपर यूएस कह रही है कि हम इसको सैंक्शंस लगा सकते हैं, उसके बारे में कहा जी कि हम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, एक या दो अगर जो आपके सोल्जर्स ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए एंटायर बटालियन जो है उसको हम नहीं दे सकते हैं, ब्लेम नहीं दे सकते हैं, और हम आपको जो नेशन आपको बड़ा वो करती है, और जो है दुनिया जो है हमको मोरालिटी के ऊपर ना तो लेक्चर दे सकती है ना हमको इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है सिखा सकती है, तो भाईजान फिर कौन सिखाएगा तुहानू, क्योंकि तुसी ते मतलब है एक ऑक्यूपायर हो, तुसी पैलेस्टाइन उत्ते कब्जा किया है, तुसी उन्होंने मार रहे हो, तो फिर आपको कौन मोरालिटी सिखाएगा अगर आपको खुद भी मोरालिटी की तमीज नहीं है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आपको कौन बताएगा। न दुनिया की भी आप बात नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं बात सुन रहे हैं, बस अपनी हांक रहे हैं आप, तो कितना आपको जनाब ये इसका फायदा होने वाला आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर जो है वो हेट्रेड पैदा होती जा रही है। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मलिक लॉ ऑफिस। बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स हैं, आपको हर तरह की सुविधाएं देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा मोहम्मद अतीक मलिक साहब को, इनका नंबर है 9052914455। इसके अलावा जनाब विलेज टेस्ट ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक 4141 मिसिसागा में डिक्सी रोड के ऊपर है ये, और इसका नंबर है 9052323663, और दूसरा है ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, उसका नंबर है 9052262294। तो आप इनको कॉल कर लें और आप इनसे इनकी सर्विसेज मांग लें। एंड जनाब राजा ते बादशाह जी कहते हैं जी मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे कॉल करेंगे, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं ऑल स्टेट का में की सर्विसेज लेने के लिए, और इनका जो नंबर है वो है 6472903773। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि इरानियन प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम रईसी साहब वो पहुंच रहे हैं, वो अब पहुंच गए हैं थ्री डेज के विजिट के ऊपर पाकिस्तान, और उनकी मुलाकातें जो हैं अभी तो हुई हैं जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा जो इस वक्त का ट्रेड वॉल्यूम है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हमको इसको 10 बिलियन US डॉलर पे लेके जाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद ये पहला किसी हेड ऑफ द स्टेट का यहां पे जो है विजिट है आफ्टर अक्टूबर 8 पोल्स, और उन्होंने कहा जी कि हम दोनों जो हैं फाइट करना चाहते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, नारकोटिक्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, हमारी जो है बड़ी लॉन्ग ब्रदरली और हिस्टोरिकल टाइज हैं, रिलीजियस टाइज हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, हमको इनको आगे लेके जाना चाहिए। वहां पे एक जर्नलिस्ट ने इनसे क्वेश्चन किया कि आपके ऊपर तो अभी वेस्टर्न सैक्शन और आ गई हैं, उन्होंने कहा जी हमें वेस्टर्न सैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको वी टर्न देम इन टू अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान को शुक्रिया बोला टू सपोर्ट द कॉज ऑफ गाजा और कंडेम करना ये जो इसराइल का जेनोसाइट है। इसके बाद अब ये जाएंगे लाहौर में और कराची में, और वहां पे ऑफिशियल से मिलेंगे जैसे कराची के गवर्नर कामरान टिसौरी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, और उसके बाद ये कायदे आजम के जो है मजार पे भी जाएंगे, वहां पे अपने रिस्पेक्ट्स पे करेंगे, और फिर वेंसडे को ये वापस तेहरान चले जाएंगे। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कहा जी जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त हम देंगे 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम, और ये तकरीबन उन्होंने फाइंड आउट किया है कि 50,000 हाउस होल्ड हैं उनके साथ स्टार्ट इमीडिएटली किया जा सकता है, इसलिए कि वो 100 यूनिट से कम बिजली जो है यूज करते हैं, इसके अलावा बेतहाशा लंबे बिजली के उनको बिल देने पड़ते हैं। इन्होंने कहा जी कि ये एक स्पेशल मीटिंग जो कर रही थी अंडर लाइट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल चीफ मिनिस्टर्स रोशन पंजाब शराब प्रोग्राम इन लाहौर, उसमें ये बात कर रही थी और इन्होंने कहा जी कि ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं और दो सोलर पैनल्स, बैटरी, इन्वर्टर, वायर्स जो हैं इन घरों को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि इनका बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाए और 16 आवर्स की चार्जिंग जो है पॉसिबल होगी थ्रू लिथियम आयन बैटरी और इसका फिर हम स्कोप जो है बढ़ाएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए ग्रेजुअली ताकि हौले हौले लोग जो हैं वो सोलर पैनल्स के ऊपर जाएं। तो ये तो पाकिस्तान ने वैसे काफी लेट कर दिया है, ये तो आज इनसे इनको कोई 10 साल पहले ही करते तो अभी इतनी जो है वो मुश्किल ना होती लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की। बहरहाल एनीवेज देर आए दुरुस्त आए तो अब ये जो कम लोग बिजली यूज करते हैं उनके ये घरों पे इनको मुफ्त दे रहे हैं, विच इज आई थिंक अ वेरी गुड मूव। औरतें और लड़कियां जो हैं उनके लिए जी कराची में भी आज बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। वहां पे एक पिंक बस सर्विस जो है वो शुरू की गई है जिसको औरतें चलाएंगी, औरतें ही उसको आगे लेके जाएंगी और औरतें ही उसके अंदर सिर्फ बैठ सकेंगी। आज की जो अनाउंसमेंट थी वो पीपीपी विमेन्स विंग की जो चेयरमैन है एमपीए फरियाल तारपुर वो रिबन कटिंग सेरेमनी में थी फ्रेरर हॉल के पास और वहां पे ये इन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि ये जो है पहले दो महीने तो औरतों को फ्री राइड्स दी जाएंगी और उसके बाद इनको जो है 50 रुपीज पर पर्सन जो है लेटर ऑन चार्ज किया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन जो है उनको भी उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि दिस विल मेक ट्रैवल अफोर्डेबल एंड एम्पावर वुमेन। और ये जो पिंक बस सर्विस है उन्होंने कहा जी कि ये पीपीपी लेड सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा तोहफा है टू मदर्स, सिस्टर्स एंड डॉटर्स। तो चलें अच्छी चीज है ये। एक आपके लिए हम लेकर आएंगे एक बड़ी खूबसूरत कराची के अंदर स्ट्रीट बनी है जो कि लोकल वहां के काउंसलर ने माजद भाई बनाई है। अगर वो आप कराची की वो स्ट्रीट देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि ये कराची, आपको लगेगा जैसे दुबई है। वो रिपोर्ट में पूरी लेकर आऊंगी। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एरिया दैट ही हैज क्रिएटेड इन कराची, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दुबई, इट इज सो ब्यूटिफुल एंड नीट एंड क्लीन एंड जो उसकी उन्होंने जोनिंग की है वो पूरी
हार्डवर्क है,
वो सिर्फ एक काउंसलर का है। वही उसमें बताने की बात है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो तो और एमपीज और एमएनएज हैं वो तो बहुत कुछ मुल्क के लिए कर सकते हैं। एक काउंसलर ने जो कितना काम किया है उसकी पूरी फुटेज और चीजें मैं आपके पास, हाँ इनिशिएटिव जो उसने लिया है वो मैं लाऊंगी तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा जनाब, पीएमएलएन जो है उसने ये जो अप्रैल 21 को वीकेंड के ऊपर जो बाय इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने मैसिवली जीता है। जाहिर है कि लोगों ने कहा इसके अंदर बड़ी धांधली हुई है। इन्होंने टू ऑफ फाइव जो नेशनल असेंबली की सीट्स थी वो जीती और ओवरऑल इन्होंने 10 of 16 जो सीट्स थी यानी 16 में से 10 सीटें जो थी इन्होंने जीती 3 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में जो कि पंजाब, केपी और बलूचिस्तान था। पीपीपी, पीटीआई, बैक, सुन्नी तहरीक, इत्तेहाद काउंसिल एंड इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एंड पीएमएलक्यू जो हैं इनको भी एक एक सीट इन्होंने जीती है। मुबारक जेब जो कि ब्रदर थे स्लेन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रिहान जेब के जिनको के मार दिया गया था फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले, उन्होंने NA8 बाजौर से जीता और ये बड़ा मेजर सेटबैक मिला पीटीआई के गुल जफर खान को। और इसके अलावा ये मुबारक जेब नहीं जो PK22 सीट बाजौर से थी वो भी जीती जमात इस्लामी के आबिद खान के अलावा। सिंध में कंबर शादाब कोट जो हैं उन्होंने पीपीपी के खुर्शीद जुनेजो वहां से जीते हैं। पीपीपी के ये जो सिंध का कंबर शादाब कोट का इलाका है वहां से पीपीपी के खुर्शीद जुनेजो जीते हैं ऑन सीट NA196 जिसको के खाली किया था बीबी जरदारी ने और इन्होंने डिफीट किया तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के मोहम्मद अली को। पंजाब में NA119 सीट जो थी जिसको के वकेट किया था चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने उसको जीता। पीएमएलएन के ही अली परवेज मलिक ने उन्होंने डिफीट किया SIC यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो शाह आजाद फारूक हैं उनको। पीएमएलएन ने NA132 की भी सीट कसूर से जीती। मलिक रशीद अहमद खान ने डिफीट किया SIC के सरदार मोहम्मद डोगर को जिसको के खाली किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। केपी के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं फैसल अमीन उन्होंने जीता NA44 की सीट DI खान से और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सबको मुबारकबाद दी और कहा कि पीएमएलएन के जो कैंडिडेट इतनी भारी तादाद में जीते हैं ये शो करते हैं लोगों का कॉन्फिडेंस हमारी पार्टी की पॉलिसीज के अंदर। उन्होंने लोगों को थैंक यू बोला कि जिन्होंने इनके लिए वोटिंग वोटिंग की और उन्होंने कहा जी कि ये जो वोटिंग हुई है उसमें हम आपने जो हमारा साथ दिया हम वी आर रेडी टू सर्व यू। ये जो इलेक्शंस हैं ये बाय इलेक्शंस जो हुए थे 21 नेशनल प्रोविंशियल सीट्स में पीटीआई ने इसको पूरे के पूरे को फ्रॉडुलेंट कहा और उन्होंने कहा जी एक दफा फिर से जो फरवरी 8 की जो हिस्ट्री थी वो दोहराई गई और यहां पे मैसिव तरीके से रिगिंग की गई है और उसके लिए हम नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं फ्राइडे अप्रैल 26 से। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दूसरे लीडर्स के साथ जिसमें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा भी थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास अगेन सारे फॉर्म 45 हैं और इनको रात के रात जो है वो सारे चेंज कर दिए जाते हैं। इसके ऊपर जो इनके बैरिस्टर हैं सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने भी कहा जी कि ये रात को सारी कारस्तानी होती है, सुबह कुछ और रिजल्ट्स होते हैं, रात की रात में वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं और जो है इनको जो है फिर सुबह कहा जाता है कि जी दूसरी पार्टी जीती है पीटीआई हार गई है। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है जी मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने ऑर्डर दिया है कि फौरन काम शुरू किया जाए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है एट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में। इससे पहले ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो था बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए और अब ये जो है कराची के लिए, ये कराची दूसरा एयरपोर्ट है जिसके के लिए उन्होंने कहा है। टू मेंबर सऊदी डेलीगेशन जो है वो सारी इंस्पेक्शन करने के लिए आज यहां पे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था मौजूद। सऊदी काउंसिल जनरल जो थे वो भी इनके साथ थे। इसके अंदर इमिग्रेशन और दूसरी जो हज की रिक्वायरमेंट्स हैं सिंध कराची के अंदर उसको जो है अब पूरा किया जाएगा। इसके अंदर यह होएगा कि जो लोग भी डायरेक्टली जाना चाहेंगे वो डायरेक्टली जा सकेंगे अपनी ही ट्रांसपोर्ट पे फ्रॉम जद्दा टू मदीना एयरपोर्ट्स टू रेजिडेंसेस विदाउट पासिंग थ्रू ये जो लेंथी जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस होती हैं एयरपोर्ट्स पे उस पे। तो यानी कि एक फास्ट ट्रैक सिस्टम जो है उसको ये लोग सेटअप कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एक स्पेशल और अलग जो है हॉल बनाया जा रहा है जहां पे के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एफआईए और कस्टम्स जो हैं उनके बंदे रहेंगे और एक पूरा फुल फ्लैश कंप्यूटर सिस्टम सेटअप किया जाएगा जिसमें जैसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी तो उनके सारी डिटेल्स आ जाएंगी और फटाफट लोगों को प्रोसेस करके आगे भेजा जाएगा। तो ये जो है जी ये यानी कि अच्छा एक चीज है लोगों को वरना बहुत हज के दौरान बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आईएसबीआर की आज एक आईएजी प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगेन 11 टेररिस्टों को दो सेपरेट जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं एक नॉर्थ वजीरिस्तान में और एक डीआई खान में वहां पे इनको मार गिराया है। 10 टेररिस्टों को इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन में मार गिराया गया था डीआई खान में और उनके पास से आर्म्स और एम्यूनिशन लिखे थे, काफी इनके बीच में हैवी फायर एक्सचेंज हुआ था। नॉर्थ वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन था उसके अंदर एक टेररिस्ट को मार गिराया गया था। लास्ट वीक 7 टेररिस्ट थे जिन्होंने के दाखिल होने की कोशिश की थी पाक अफगान बॉर्डर से इन स्पिनकई के इलाका में गुलाम खान जो था इलाका उसमें से, तो उनको उस वक्त भी मारा गया था। तो आईएसपीआर ने कहा जी कि हम जो है वो वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं और हम टेररिज्म को जड़ से खत्म करेंगे। इलेक्शंस जो हैं आपको पता ही, हमने आपको फ्राइडे को बताए थे कि फर्स्ट फेज के जो हैं वो शुरू हो गए हैं वहां पे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो बयानबाजी है वो अभी भी वीकेंड गुजरने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी ने एक इलेक्शन रैली में बहुत ही इस्लामोफोबिक जो है रिमार्क्स दिए हैं जिसकी के वजह से ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गई है और आपको पता ही है कि जितने भी राइट्स ग्रुप हैं दुनिया के वो वैसे भी कहते हैं कि बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया की माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है वो शुरू किया हुआ है उन्होंने शुरू और मुसलमानों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन जो है बना के रख दिया है। बीजेपी ये सारे एलिगेशन जो है इसको डिनाई करती है। हुआ क्या है, हुआ यह है कि राजस्थान की पोल रैली हो रही थी जिसमें कि मोदी जी जो है उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस जो है वो औरतों से गोल्ड लेके, आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान में लोग औरतें जो हैं गोल्ड बहुत बजा के रखती हैं और फिर उसको मुश्किल के वक्त में इस्तेमाल करती हैं, उसी का जिक्र कर रहे थे मोदी जी। उन्होंने कहा जी ये गोल्ड औरतों का लेके और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को राइट दे रहे हैं कि जो नेशन का वेल्थ है उसके ऊपर ये लोग कब्जा कर लें, और लेकिन कांग्रेस ने बताया नहीं है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट जो है किन लोगों के बीच में किया जाएगा। तो क्या आप लोग उस सेक्ट को जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको आप अपना हार्ड अर्नड मनी लेने देंगे या नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये रेफर कर रहे थे मनमोहन सिंह की जो 2006 की स्पीच थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ की, यानी कि जैसे आपको पता ही इस्लाम में भी ज़कात का निजाम है कि अमीरों से लेकर गरीबों को दे, तो कुछ समवट ऑन दोज लाइन्स उनकी कुछ बात थी, लेकिन इन्होंने इसको काफी ट्विस्ट दिया। अब इसके ऊपर जो है लोग बड़ा भड़क